नमस्कार मित्रगण, हम शिव महिम्न स्तोत्र की पढ़ाई कर रहे थे तो उस कड़ी में आज हम आठवें श्लोक से आरंभ करते हैं। कवि पुष्पदंत कहता है,
मोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः कपालश्चेति यत्तव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम वृद्धिम दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति।
मोक्षः खट्वांगं परशु अजिनं भस्म फणिनः कपालः इति तव हे वरद तंत्रोपकरणम्। अर्थात हे वरद, हे शिव, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तुएं हैं? तो तुम्हारे पास एक महोक्ष अर्थात एक बड़ा विशाल काय, एक बैल तुम्हारे पास है अर्थात नंदी जो शिवजी का वाहन है, खटवांग अर्थात खटिया का एक पहिया जो चौकोर आकार में होता है और मोटा और मजबूत होता है, अर्थात एक डंडा तुम्हारे पास है, परशु तुम्हारे पास है और अजिनम अर्थात व्याघ्र का चर्म, वाघ का चमड़ा तुमने अपने वस्त्र के रूप में लपेटा हुआ है, भस्म पूरे शरीर में भस्म लगाया हुआ है, फणिनहा और एक नाग तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर को लपेटे हुए बैठा रहता है, और कपालम अर्थात एक नरमुंड तुम्हारे पास है जो कि उस डंडे के ऊपर तुम लटका करके रखते हो। बस तुम्हारे पास इतनी ही चीजें हैं, इतनी ही वस्तुएं हैं, यही तुम्हारे उपकरण हैं। तो कोई सोच सकता है, कोई कह सकता है कि भाई इसके पास है ही क्या, लेकिन कवि कहता है कि इसके बावजूद सुराहा तान ताम रुद्धिम दधति, सुर अर्थात देवताओं को और ताम ताम रुद्धिम दधति वह रुद्धियाँ देता है, रुद्धिम दधति समृद्धि देता है। कौन देता है? जो मांगो वही रुद्धियाँ देता है देवताओं को भी। वह कौन देता है? तो भवद भू प्रणिहिताम, तुम्हारी एक भौं केवल ऊंची कर देने से ही, तुम बस अपनी एक भौं ऊंची कर दो उतने भर से ही देवताओं को उनकी सारी मनचाही समृद्धियां मिल जाती हैं, इतनी तुम्हारी अधिक महिमा है। तो फिर तुम्हारे खुद के पास कुछ भी क्यों नहीं दिखाई पड़ता? वह इसलिए कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृगतृष्णा भ्रमयति, तुम आत्मा राम हो, स्वात्मा राम हो, अपनी ही आत्मा में तुम रमे हुए हो। तो जो अपनी ही आत्मा में रमा हुआ है ऐसे व्यक्ति को विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति, उसे किसी भी वस्तु का मोह, किसी वस्तु की चाह, तृष्णा इच्छा उसे भ्रमित नहीं कर सकती, अर्थात उसे खुद किसी वस्तु की चाह नहीं रहती है क्योंकि वह अपनी आत्मा में ही रमा होता है। तो तुम चूंकि अपनी आत्मा में ही रमे हुए हो तो तुम्हें उन सारी वस्तुओं की चाह क्यों हो सकती है जो तुम्हारे केवल एक भाव ऊंचा कर देने से ही देवताओं को मिल जाती हैं वो सारी वस्तुएं, पर तुम्हें उनकी चाह क्यों होने लगे क्योंकि तुम तो उनसे परे, उनसे छुटकारा पा करके तुम उनसे परे रह करके अपनी आत्मा में ही तुम रमे हुए हो। कवि आगे कहता है, ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलम अपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो ध्रव्या ध्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्त्येप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्वे मित्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। अब इसका अर्थ देखते हैं। ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलम अर्थात कुछ लोग ये कहते हैं इस संसार के विषय में, इस विश्व के विषय में, इस ब्रह्मांड के विषय में कि यह सकल जगत ध्रुव है, चिरकाल के लिए चलने वाला, टिकने वाला इस प्रकार यह जगत है। सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं, ये एक लंबी संधि है फिर से, सकलम अपरः तु अध्रुवम इदम्। अपरः अर्थात कोई अन्य लोग यह कहते हैं कि यह सारा जगत अध्रुव है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। परो ध्रुव्याध्रुव्ये, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह टिकने वाला भी है और नश्वर भी है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अपना मत व्यक्त करते रहते हैं। व्यस्त विषये, उन्हें निश्चित रूप से समझ नहीं है कि यह किस प्रकार चलता है। अब कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है, ध्रुव्या ध्रुव्ये। तो ध्रुव्य, यह शब्द ध्रुव से बनता है। ध्रुव अर्थात अचल, अटल, और ध्रुव्य अर्थात ध्रुव से संबंधित, ध्रुव की तरह। तो यह हमने पहले भी देखा है कि संस्कृत भाषा की विशेषता है कि एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया जाता है। जैसे भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से उतारा तो भगीरथ के नाम से नया शब्द बना भागीरथी, जो कि भगीरथ के पुत्री के समान है। या दशरथ शब्द से दूसरा शब्द बना दाशरथी, अर्थात दशरथ का पुत्र। तो इसी प्रकार ध्रुव शब्द से बना ध्रुव्य, अर्थात जिसमें ध्रुवता के गुण हों। और उसी प्रकार अध्रुव शब्द से बना अध्रुव्य। तो ये ध्रुव क्या है और अध्रुव क्या है, और ध्रुव्य क्या है और अध्रुव्य क्या है, इसी विषय में समस्त जग चर्चा कर रहा है। यहाँ कवि ने एक और सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, गदति। गदति अर्थात कहना, जैसे हम कहते हैं कथयति, उसी प्रकार गदति। लेकिन जगति गदति, इस प्रकार दो शब्दों का प्रयोग करके कवि ने यहाँ पर एक ध्वनि लालित्य उत्पन्न किया है। तो इस पूरे महिम्न स्तोत्र में हम इस प्रकार की कवि की प्रतिभा को वारंवार देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर जगति गदति, इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया है कि दोनों शब्द अत्यंत अनुप्रास या लय लिए हुए हैं। और पुरमथन शब्द का प्रयोग फिर से हुआ है शिवजी के लिए, और ये संबोधन है, हे पुरमथन अर्थात त्रिपुरों का नाश करने वाला, तो उसे त्रिपुरारी भी कहा जा सकता है, और उसे त्रिपुरमथन भी कहा जा सकता है, या उसे पुरमथन भी कहा जा सकता है। तो कवि ने यहाँ पर पुरमथन शब्द का फिर से प्रयोग किया है। तो कवि आगे कहता है, समस्त्येप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। हे पुरमथन, ये जो सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, कोई कहता है जगत नश्वर है, कोई कहता है जगत चिरंतन है, कोई कहता है कि जगत दो भागों में बटा हुआ है और हर एक विषय वस्तु का अपना अपना गुण है, अपना अपना स्वभाव है, इसलिए कुछ वस्तुएं नश्वर हैं और कुछ अनश्वर। तो ये सब बातें मुझे विस्मित कर देती हैं, भ्रम में डाल देती हैं। लेकिन हे पुरमथन, स्तुवन त्वाम, जब मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ तो न जिह्वेमी, जिह्वेमी अर्थात लज्जा महसूस करना, शर्म महसूस करना। तो जब मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ तो मुझे कोई भी लज्जा महसूस नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं बहुत निश्चिंत और निश्चितता से बात कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और स्तुवन जिह्वे मित्वाम न खलु ननु धृष्टा मुखरता। तो यहाँ खलु शब्द का अर्थ है सच में, और ननु का अर्थ है जैसे हम हिंदी में कहते हैं अरे, ओ, आ, तो उसी प्रकार कवि भी कभी कभी ऐसे विस्मय आदि बोधक शब्दों का उपयोग कर रहा है। तो वह कहता है कि खलु ननु धृष्टा मुखरता। तो मेरी यह जो मुखरता है, जो मैं ऐसे बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े छंद में, जो मैं तुम्हारे प्रति ये मैं स्तुति गा रहा हूँ, यह एक प्रकार से मेरी धृष्टता ही कही जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा वर्णन करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसमें मुझे कोई संकोच या लज्जा नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं निश्चितता से और निश्चिंतता से कह सकता हूँ, बिना कोई बुद्धि भेद लिए, कि कौन सी विषय वस्तु क्या है, किसका गुण क्या है, कौन नश्वर है, कौन अनश्वर है, इन सारे पचड़ों से दूर मैं तुम्हारी स्तुति में लगा हुआ हूँ। तो इसके लिए जो मुखरता मैं दिखा रहा हूँ, और उसी मुखरता से मेरी धृष्टता भी आ रही है, लेकिन उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। तो मित्रों, इस शिव महिमन स्तोत्र को हम आगे और भी पढ़ते चलेंगे। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।